शांति प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, शांति किसे नहीं चाहिए। सभी सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं, पर जीवन में शांति तो आती नहीं। सारे जीवन कभी अनचाही बात हो गई, कभी मनचाही बात हुई या नहीं हुई, और हमने अपना मन का संतुलन खो दिया, व्याकुल हो गए। व्याकुल होने के न जाने कितने कारण बन जाते हैं। तो सारे जीवन भर हमारी मनचाही होती रहे तो हम व्याकुल नहीं होंगे, पर क्या ये संभव है कि सारे जीवन भर हमारी मनचाही होती रहे, अनचाही हो ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी हजार चाहने पर अनचाही का सामना उसे करना ही पड़ता है। यह असंभव है कि किसी के जीवन में केवल मनचाही होती रहे, अनचाही हो ही नहीं। अनचाही होने पर हम व्याकुल हो जाएं, मनचाही होने पर हम खुशियों से नाचने लगें, तो सुख नहीं तो शांति नहीं। आए जीवन में जितनी अनचाही आने चाहे आए, जितनी मन चाहे आना चाहे आए, सारी अवस्थाओं में हम अपने मन की क्षमता कायम रखें, मन का संतुलन कायम रखें, तो हमारे लिए सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। कहना बड़ा आसान है, सुनना भी बड़ा आसान है। दुनिया में सबसे आसान काम यह है कि लोगों को उपदेश दो, सबसे सरल है। उससे भी सरल है कि उपदेश सुनो। उपदेश देने वाले ने घंटे भर उपदेश दे दिया, बड़ा खुश हुआ, देखो हमने कितना अच्छा उपदेश दिया, कितना लोगों का कल्याण है इसमें। सुनने वाले खुश कि आज तो ऐसा उपदेश सुनने को मिला जो पहले कभी नहीं सुना था। क्या हुआ? मनोरंजन हुआ। ये धर्म के नाम पर मनोरंजन हुआ। कोई टीवी खोलते हो, कोई एपिसोड देखते हो, मनोरंजन होता है। किसी खेल तमाशे में जाते हो, मनोरंजन होता है। ये धर्म के नाम पर मनोरंजन हो गया। बहुत अच्छी बात कही, कहने वाला खुश, बहुत अच्छी बात कही मैंने। सुनने वाला खुश, बहुत अच्छी बात सुनी मैंने। जीवन में कैसे उतरे, धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। धारण नहीं करें, केवल चर्चा ही चर्चा करें, वाणी विलास करें, बुद्धि विलास करें, श्रुति विलास करें, मनोरंजन करें, क्या मिलेगा? धोखे में आ गए। इसलिए हमारे देश के महापुरुषों ने धर्म धारण करना सिखाया, कोरे धर्म का उपदेश नहीं दिया। जिस किसी ने कोरे धर्म का उपदेश दिया, समझो वो महापुरुष नहीं था, वो स्वयं धार्मिक नहीं था। और जिसने धर्म धारण करना सिखाया, तो समझो महापुरुष, तो समझो धार्मिक है। उसने चखा है धर्म को, तो चखना सिखाता है। धारण न करे तो क्या लाभ हुआ धर्म का। प्यासा है आदमी, प्यास के मारे कंठ सूखते हैं और पास ही शीतल जल पड़ा है, आप उसकी चर्चा करते हैं, ये जल बड़ा शीतल है, इसे पीने से प्यास बुझ जाती है, कहने वाला भी बहुत प्रशंसा करता है, सुनने वाला बहुत प्रशंसा करता है, पीता नहीं कोई, तो प्यास कैसे बुझेगी भाई। भूखा है, थाली में भोजन परोसा हुआ है, उस भोजन के उस षटरस व्यंजन की प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा करने वाला प्रशंसा करके खुश हो रहा है, सुनने वाले सुन के खुश हो रहे हैं, कोई भोजन खाकर नहीं देता तो भूख कैसे मिटेगी। रोगी है और उसकी औषधि की चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी औषधि है, अरे रोग को जड़ों से निकाल देगी, इतनी अच्छी औषधि है, वाह वाह क्या कहना, कितनी अच्छी औषधि है, कोई सेवन नहीं करे तो किस काम की बात हुई। धोखा हो गया, धर्म के नाम पर इतना धोखा चलता है, इतना धोखा चलता है जो किसी व्यापार धंधे में भी नहीं चलता। इस धोखे के बाहर कैसे आए, धोखे के बाहर आने की पहले ये समझना होगा कि धर्म क्या है। भारत की प्राचीन भाषा में धर्म कहते थे स्वभाव को, वत्थ स्वभाव धम्म, धर्म वस्तु का स्वभाव होता है, सजीव वस्तु का निर्जीव वस्तु का स्वभाव क्या है। अत्तनो स्वभाव धारेति इति धम्म, अपना स्वभाव धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। आज भी हजारों वर्ष पुरानी धर्म की ये बात, धर्म की ये व्याख्या एक गूंज की तरह सुनाई दी जाती है, जब कोई कहता है अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, न हिंदू धर्म है, न बौद्ध धर्म है, न जैन धर्म है, न ईसाई धर्म है, न मुस्लिम धर्म है, धर्म है उसका स्वभाव है। अगर वो जले नहीं और जो उसकी लपेट में आया उसे जलाए नहीं तो अग्नि नहीं कुछ और होगी। धर्म अग्नि है तो जलेगी ही, स्वयं जलेगी और जो उसके लपेट में आ गया उसे जलाएगी, तो अग्नि है क्योंकि उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। ऐसे ही कहें बर्फ का धर्म है शीतल होना और शीतल करना, स्वयं भी शीतल रहेगी, जो उसके संपर्क में आए उसे शीतल करेगी, तो बर्फ। ठीक इसी प्रकार जब हम कहते हैं हर प्राणी जरा धर्मा है, हर प्राणी मरण धर्मा है, स्वभाव है, हर प्राणी का स्वभाव है, जो जन्म लेगा वो जर्जरित होगा ही, मृत्यु को प्राप्त होगा ही, ये उसका स्वभाव है, ये धर्म है। भारत की पुरानी भाषा में धर्म का यही अर्थ होता था। तो हमने अपने चित्त में क्या धारण किया, जो धारण किया उसका क्या स्वभाव है, बस यहां से धर्म शुरू हुआ, जीवन जीने की कला शुरू हुई। मैंने अपने चित्त में जो धारण किया उसका क्या स्वभाव है, मैंने क्रोध धारण किया, कोप धारण किया, द्वेष धारण किया, दुर्भावना धारण की, क्या स्वभाव है, इसका स्वभाव है जलना और जलाना। जो धारण करेगा जलने लगेगा, भीतर से व्याकुल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, सारी शांति खत्म, स्वयं भी जलेगा, व्याकुल होगा और सारे वातावरण में व्याकुलता ही व्याकुलता, तनाव ही तनाव भर देगा। कोई व्यक्ति उस समय उससे मिलने आए वो भी व्याकुल हो जाएगा, ये उसका स्वभाव है। क्रोध ज्यादा ना, द्वेष ज्यादा ना, दुर्भावना जागे नहीं, जलाएगी ही, मुझे भी जलाएगी और आसपास के वातावरण को भी जलाएगी। इसी प्रकार मैंने अपने चित्त में मैत्री जगाई, करुणा जगाई, सद्भावना जगाई, तो उसका क्या स्वभाव है, उसका क्या धर्म है? उसका धर्म है शीतल शांति। जिसने अपने भीतर मैत्री करुणा सद्भावना जगाई, भीतर उसे बड़ी शीतलता, बड़ी शांति, बड़ा सुख महसूस होने लगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, जो धारण किया उसका यही स्वभाव है। और फिर आसपास के वातावरण में शांति ही शांति की तरंगें, शीतलता की शीतलता तरंगें, जो संपर्क में आए उसे भी शांति मिले, उसे भी सुख मिले। ये पुरातन भारत का धर्म होता था, इसे भुला दिया। इसकी तो चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, वाद विवाद करेंगे, पुस्तकें लिखेंगे, खूब व्याख्यान होगा, धारण नहीं। धारण तो ये कर्मकांड कर लिया, वो कर्मकांड कर लिया, ये वेशभूषा बना ली, वो वेशभूषा बना ली, ये पर्व उत्सव मना लिया, वो पर्व उत्सव मना लिया, ये तीज त्यौहार मना लिया, वो तीज त्यौहार मना लिया, ये दार्शनिक मान्यता मान ली, वो दार्शनिक मान्यता मान ली, क्या मिला रे? धर्म के नाम पर इससे बड़ा क्या धोखा होगा? एक आदमी अपनी परंपरा का कर्मकांड पालन करता है और समझता है मैं बड़ा धार्मिक, अरे मैं कितना धार्मिक, और अंदर विकार पर विकार जगाया जा रहा है। जब देखो तब कोई ना कोई विकार जगाता है, व्याकुल होता है, विकार जगाता है, व्याकुल होता है, फिर भी समझता बड़ा धार्मिक। मैं देखो अपने मंदिर हो आया, अपने मस्जिद हो आया, अपने गिरजाघर हो आया, अपने चैत्य में हो आया, अपने उपाश्रम में हो आया, और ये कर्मकांड कर लिया, वो कर्मकांड कर लिया, हो गया ना, मेरे धार्मिक होने में क्या कसर? मैंने देखो ऐसे कपड़े पहन लिए, सफ़ेद पहन लिए कि लाल पहन लिए कि पीले पहन लिए कि काले पहन लिए, मैं धार्मिक हूँ। मैंने लंबी चोटी रख ली कि बड़ी दाढ़ी रख ली कि बड़े केस रख लिए कि सिर मुंडा लिया, बड़ा धार्मिक हूँ, मेरी धार्मिकता में क्या कसर? कहाँ भटक गए? धारण करे तो धर्म है। धारण क्या किया चित्त में तूने, धारण क्या किया इसको जांचना है गुरु। क्रोध आता है तो जिस व्यक्ति पर क्रोध आया है, जिस घटना पर क्रोध आया है, जिस परिस्थिति पर क्रोध आया है, मन में वही घूमती, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, तो वो तो क्रोध की आग में पेट्रोल डालने की बात हुई, तो बाहर कैसे निकला रे? वही चिंतन चलता है। क्रोध आया तो क्रोध का जो आलंबन है उसका चिंतन चलता है, वासना जागी वासना का जो आलंबन है उसी का चिंतन चलता है, भय जागा भय का जो आलंबन है उसका चिंतन चलता है, अहंकार जागा अहंकार का आलंबन है उसका चिंतन चलता है, क्या करने लगे? क्रोध जागा तो भीतर तेरी क्या हालत हुई? भय जागा भीतर तेरी क्या हालत हुई? ईर्ष्या जागी अहंकार जागी वासना जागी भीतर क्या हालत हुई वो देखना भूल गए, बाहर बाहर देखेंगे। इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये बहुत अच्छा, ये बहुत बुरा, तेरे भीतर क्या हुआ? ये भारत का धर्म हुआ करता था, भीतर क्या हुआ उसे देख, तेरे भीतर की सच्चाई देख। इसी को विपश्यना कहते थे, पश्यना कहते हैं देखने को, विपश्यना विशेषेन पश्यति इति विपश्यना, विशेष रूप से देखता है। क्या विशेष रूप से देखता है? विशेष रूप से देखता है, माने भोक्ता भाव से नहीं, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, जैसा है वैसा है, इस वक्त ऐसा है तो ऐसा है, बस उसे स्वीकार करता है। इस वक्त मेरे मन में क्रोध जागा है, बस उसे दूर करने की भी कोशिश मत करो। इस समय मेरे मन में क्रोध जागा है, और क्या हुआ, क्रोध जागते ही शरीर में जलन पैदा हुई है, स्वीकार करो, जलन पैदा हुई है, धड़कन बढ़ गई है, धड़कन बढ़ गई है, तनाव आ गया है, तनाव आ गया है, व्याकुल हो गया हूँ, व्याकुल हो गया हूँ, बस स्वीकार करो, इस समय की ये सच्चाई है। तो वो क्रोध न सिर पर चढ़ेगा, न व्याकुलता सिर पर चढ़ेगी, न तनाव कायम रहेगा, अपने आप कमजोर होता चला जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। जैसे ही साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, समता के भाव से सच्चाई को देखने लगे, विकार अपने आप दूर होने चले गए, दूर होते चले गए। कैसे करें, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। जब विकार जागता है तो इस कदर सिर पर सवार हो जाता है, भूत की तरह सवार हो जाता है, उस वक्त याद ही नहीं रहते कि हमें अपने भीतर देखना है। उस वक्त तो जो आलंबन है, हमारे क्रोध का आलंबन है, द्वेष का आलंबन है, वासना का आलंबन है, अहंकार का आलंबन है, वही प्रमुख है। मेरे भीतर क्या हो रहा है ये ख्याल ही नहीं आता, इसे देखना भाई, तो कौन याद दिलाए। तो अपने साथ एक प्राइवेट सेक्रेटरी रखे और वो याद दिलाए, देख मालिक क्रोध आ रहा है तुझे, तू क्रोध आ रहा है, देख अपने क्रोध को। और क्रोध से कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं कि वो इसी समय आएगा, कोई सेक्रेटरी होगा या होगी तो एक शिफ्ट की होगी, तो तीन शिफ्ट के तीन रखे, और छुट्टियां भी देनी पड़े तो चार रखें, कौन रखे। अच्छा रख भी लिया और क्रोध आया और सेक्रेटरी कहता है कि कहती है मालिक क्रोध आया, तो पहले चांटा उसी को मारूं, मूर्ख मुझे सिखाता है, क्रोध आया ना, कहाँ होश है, बात नहीं बनी। सेक्रेटरी अपने साथ अपने आप को रखना होता है। तो हमारे देश के महापुरुषों ने सिखाया, अपने भीतर दो सेक्रेटरी हैं तेरे पास, उनको तैयार कर। एक सेक्रेटरी तो ये है कि जैसे ही मन में विकार जागेगा, कोई विकार जागे, कोई विकार जागे, ये जो सांस है वो अपनी स्वाभाविकता खो देगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, जरा सा तेज हो जाएगा, जरा सा भारी हो जाएगा, और जैसे ही विकार निकल गया फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर हमें अपना सांस देखना आ गया और सांस के प्रति सजग, अरे अब नॉर्मल हुआ ना, क्या हो गया, सांस तेज हुआ ना, क्या बात हुई, क्रोध जागा है, भय जागा है, वासना जागी है, अहंकार जागा है, तो सेक्रेटरी कहेगा कुछ जागा है मालिक तेरे भीतर, देख मत तेज हो गया। एक और सेक्रेटरी हमारे पास है, मन में कुछ भी जाग जाए, जागते ही शरीर में एक सेंसेशन होगी। हमारे देश के महापुरुष बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ऋषि थे, किसको ऋषि कहते हैं, जो ऋत की गवेषणा करता है, ऐषणा करता है, अन्वेषण करता है, खोज करता है। ऋत माने कुदरत का कानून, विश्व का विधान, नियम, प्रकृति का नियम क्या है, इसको खोजने वाले ऋषि होते थे, कर्मकांड करने वाले नहीं। कर्मकांड करने वाले अपने को हजार ऋषि कहते रहे, वो वास्तविक ऋषि नहीं। वास्तविक ऋषि होते थे सच्चाई क्या है, कानून क्या कहता है, मेरे भीतर क्रोध जागा है तो मैं व्याकुल हो ही जाऊंगा, मेरे भीतर विकार जागा है मैं अपनी क्षमता खो ही बैठूंगा, ये नियम है। तो ये नियम को जैसे जैसे जानना शुरू कर दिया, वैसे वैसे इसके बाहर आने लगा। तो एक और सेक्रेटरी मिल गया, जैसे ही विकार जागेगा शरीर पर एक सेंसेशन होगी, क्रोध जागेगा एक तरह की सेंसेशन होगी, भय जागेगा बॉडी में एक तरह की सेंसेशन होगी, ईर्ष्या जागेगी, अहंकार जागेगा, वासना जागेगी, कोई विकार जागे। ये हो नहीं सकता कि मन में विकार जागे और बॉडी पर सेंसेशन ना हो। माइंड और मैटर का इतना स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शन है, जब तक जीवित हैं तब तक दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। माइंड बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, बॉडी माइंड को इन्फ्लुएंस करती है, ये क्रम चल रहा है भीतर। कभी अपनी ओर देखा नहीं, जब से जन्मे आँख खुली बाहर देखा, बहिर्मुखी ही बहिर्मुखी रहे, कभी अंतर्मुखी हुए नहीं। अंतर्मुखी हुए भी तो एक अजीब पागलपन लेकर के, आँख बंद कर लो और करो कोई कल्पना, सच्चाई का दर्शन नहीं किया, कोई करो कल्पना, हमारी ये मान्यता, तुम्हारी ये मान्यता, हमारी मान्यता सही, तुम्हारी मान्यता गलत, करो ध्यान उसका, क्या मिला रे, धोखा ही धोखा ना। ध्यान करना है सत्य का, अपने भीतर सच्चाई क्या हुई उसी जानना है, वो हमारी रक्षा करेगा, उससे हमारा कल्याण होगा। अन्यथा तो थोड़ी देर के लिए पलायन कर गए, एस्केप कर गए, गुस्सा आया और हमने किसी कल्पना का ध्यान किया, किसी मान्यता का, ये दार्शनिक मान्यता, वो दार्शनिक मान्यता, सबके अलग अलग होती है, ध्यान किया तो मन उसमें लग गया, देखा कि हमारा गुस्सा शांत हो गया, देखो हो गया ना, हमारी वासना शांत हो गई, हमारा भय शांत हो गया। अरे कहाँ शांत हो गया, ऊपर ऊपर से शांत हो गया, भीतर वैसा का वैसा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, भीतर का स्वभाव वैसे ही क्रोध जगाया जा रहा है, क्रोध में कुलबुलाया जा रहा है, ऊपर ऊपर के मानस को, कॉन्शियस माइंड को हमने एक ओर लगा दिया, बात नहीं बनी। और अगर हम अपने भीतर सच्चाई को यथाभूत जैसी है वैसी है देखना शुरू किया तो उसकी ताकत कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो हमें ओवर पावर नहीं कर सकेगी। ये दो बातें सीखनी होती है, एक तो सांस के प्रति सजग, प्योर सांस, केवल सांस, उसके साथ कुछ जुड़े नहीं, जहाँ इसके साथ कोई शब्द जुड़ गया तो वो शब्द प्रमुख हो जाएगा, सांस भूल जाएंगे, कोई शब्द नहीं, कोई वर्बलाइजेशन नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई फिलोसॉफिकल बिलीफ का इम्पोजिशन नहीं, कुछ नहीं, सांस सांस, लंबा है तो लंबा है, ऊंचा है तो ऊंचा है, बाएं नासिका से गुजरता है तो बाएं से गुजरता है, दाहिने से गुजरता है तो दाहिने से गुजरता है, बस साक्षी भाव से जान रहे हैं। सांस की कसरत नहीं, बिल्कुल नहीं, प्राणायाम बिल्कुल नहीं, प्राणायाम से बिल्कुल विपरीत, प्राणायाम में सांस पर कंट्रोल करना होता है, उसे नियंत्रित करना होता है, उसके अपने लाभ हैं, करना चाहिए, वो बिल्कुल अलग बात, लेकिन इस विद्या में यथाभूत जैसा है वैसा है, इस समय सांस ऐसा है तो ऐसा है, इसमें परफेक्ट होते चले जाओगे तो देखोगे जब भी सांस में कुछ उपद्रव आया तुरंत होश आएगा, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, देख सांस तेज हो गया ना, क्या हुआ, तो एक सेक्रेटरी ने कहा देख कुछ गड़बड़ हुई, तेरे मानस में कुछ ना कुछ विकार जाएगा, और वो जब कहेगा तो उसको थप्पड़ भी नहीं मार सकते, माननी पड़ेगी उसकी बात, अच्छा भाई अब तुझे देखेंगे, सांस को देखेंगे, कोई संवेदना कहेगी देख मालिक तेरे भीतर कुछ हुआ, तेरे मानस में कुछ हुआ, सारा शरीर गर्माने लगा, देख धड़कन बढ़ गई, देख तनाव हो गया, ये सेक्रेटरी ने कहा हमें, ये सांस और संवेदना के सेक्रेटरी जो 24 घंटे हमारे साथ है, जब से जन्मे हैं जब तक मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाएंगे, ये हमको चेतावनी देते रहेंगे, कैसे देंगे, इनको चेतावनी देने की योग्यता और हमारी चेतावनी सुनने की योग्यता, ये दोनों तैयार करनी पड़ेगी ना, इसी को भी प्रश्न कहते हैं। प्रवचन सुन करके कोई आदमी कहे अच्छा कल से मैं अपने सांस को देखना शुरू कर दूंगा, कर दे, क्या होगा, शिविर में आते हैं तो कठिनाई होती है, दस दिन के लिए आते हैं तो आते हैं कि क्या है, सांस देखना है, कुछ करना भी नहीं, सांस की कसरत भी नहीं है। जैसे नदी के किनारे कोई आदमी बैठा है और नदी बह रही है, वो तट पर बैठा देखता है, इसी को तटस्थ कहते हैं। तट पर बैठा है, नदी बह रही है, तेज बह रही है तो तेज बह रही है, धीमी बह रही है तो धीमी बह रही है, बस बह रही है वो देख रहा है। ऐसे ही सांस का प्रवाह तेज है तो तेज है, धीमा है तो धीमा है, वो देख रहा है। इसमें क्या मुश्किल बात है? बहुत मुश्किल बात है। जब भी हिम्मत करके 10 दिन के लिए आओगे तो पहले दिन इतनी घबराहट होगी, इतनी घबराहट होगी, अरे बाबा हमें तो सांस देखना था और 2 सांस भी नहीं देख पाए कि मन वो भागा, कहाँ भाग गया पता नहीं। फिर होश आया, 10 मिनट बाद आया कि 20 मिनट बाद आया, घंटे भर बाद, अरे मैं क्या करने लगा, मुझको सांस देखना था और कहाँ भाग गया। अच्छा फिर शुरू करते हैं, 2-4 सांस नहीं देखी तो फिर भाग गया, फिर भाग गया। तो पहले दिन तो इतनी घबराहट होती है, अरे बाबा हमसे नहीं होगा, इतना मामूली सा काम है, सांस को देखना है, यही नहीं होता तो हमारे बस का नहीं है, भागो यहाँ से, हमारे काम का नहीं है। गुस्सा आएगा, कभी अपने आप पर गुस्सा आएगा, अपने मन पर गुस्सा आएगा, अरे कैसा मन लिए चल रहा हूँ, मामूली सा काम है, यहाँ बैठ करके जैसे दरवाजे पर द्वारपाल बैठा है और सांस आ रहा है जा रहा है उसको जान रहा है, इसमें क्या मुश्किल बात है, इतना काम भी नहीं कर पाता तो गुस्सा आएगा। तो जो सिखाने वाला वो कहेगा नहीं गुस्सा नहीं करना, अरे अपने पर भी गुस्सा नहीं करना, गुस्सा निकालने के लिए तो आए हो और तुमने गुस्सा शुरू कर दिया, अपने आप को शुरू कर दिया। स्वीकार करो, इस समय मेरा मन भाग गया, सांस को देखते देखते कहीं भाग गया, होश आते ही अच्छा फिर शुरू करते हैं, फिर भाग गया, होश आते ही अच्छा फिर शुरू करते हैं। यूँ बड़े धीरज से काम करना होता है, बड़ी निष्ठा से, बड़ी लगन से, बड़ी निरंतरता से। तो एक दिन बीतते बीतते, 2 दिन बीतते बीतते, 3 दिन बीतते बीतते शांत होने लगता है। एकदम शांत नहीं हुआ पर पहले दिन के मुकाबले बहुत शांत हो गया। अब सांस जागने का काम जानता है, भाग गया तो जल्दी वापस आ जाता है, इतना तो हुआ। तो 3 दिन बीतते बीतते यहीं जान लगाए हुए थे, सांस आ रहा है जा रहा है, अब देखेंगे यहाँ पर कुछ और होने लगा। होता ही रहता है, सारे शरीर में, शरीर के अणु अणु में प्रतिक्षण, जब तक जीवन है, जहाँ जहाँ जीवन है, प्रतिक्षण कोई सेंसेशन होती है। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, अब क्योंकि 3 दिन तक यहाँ काम किया तो यहाँ पर कुछ सेंसेशन मालूम होने लगी, कोई सेंसेशन, गर्मी सी लगी कि सर्दी सी लगी कि पसीना सा आया कि धड़कन हुई कि फड़कन हुई कि सिहरन हुई कि पुलकन हुई कि भारीपन हुआ कि हल्कापन हुआ, कुछ हुआ, कुछ होते ही रहता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बस अब इसी को देखेंगे, ये दूसरे सेक्रेटरी को तैयार कर रहे हैं, पहला सेक्रेटरी सांस देखने का, दूसरा सेक्रेटरी सेंसेशन देखने का, इसको तैयार कर रहे हैं। चौथा दिन होते होते तो सिर से लेकर के पांव तक सारे शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है, खदबद खदबद खदबद, क्या हो रहा है, अजीब मालूम होता, क्या हो रहा है हमारे भीतर, हो रहा है, सबके हो रहा है, कभी जाना नहीं, अब इसे हम जानने लगे। तो क्या मिला, मैं भी जब पहले पहल गया शिविर में, बहुत कट्टर सनातनी घर में जन्मा और जी में घबराहट थी, अरे ये तो बौद्धों का है, अरे बाबा कहीं मैं बौद्ध हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इस घबराहट से गए, चलो करके तो देखे, क्या कराते हैं, सांस को देखो, क्या मिलेगा सांस को देखने से, सांस हम ना देखें तो भी आता है, देखें तो भी आता है जाता है, क्या करें इसको, इसके साथ कोई नाम देते, अच्छा बाबा बुद्ध का ही नाम देते, महावीर का ही नाम देते, राम का देते, अल्लाह का देते, गॉड का देते, कोई तो नाम देते, नाम भी नहीं, कोई रूप कोई आकृति वो भी नहीं, खाली सांस देखो, ये क्या कराते हैं। बात समझ में आई धीरे धीरे, हमारे मन को निर्मल करने के लिए, हमारे मन को विकारों से मुक्त करने के लिए ये विद्या है। ऐसे ही जब शरीर में कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं धड़कन है, कहीं फड़कन है, कहीं सेहरन है, कहीं पुलकन है, क्या हो रहा है, क्या देखें इसको, बेहोश आता है काम करते करते। हमारे मन में जो विकार हैं वो शरीर पर सेंसेशन के रूप में जागते हैं, और हमने इन सेंसेशन को देखना सीख लिया तो अपने विकारों को देखना सीख लिया। जैसे ही विकार जागा हमको होश आया, विकार जागा ना, होश आते ही तो उसकी ताकत कम हो गई। हम बेहोशी में हैं तो उसकी ताकत बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, वो सिर पर चढ़ता है और हम होश खो बैठते हैं। लेकिन हम सजग हैं, अच्छा क्रोध जागा है, तुझे देखते हैं तो कब तक रहता है, बेचारा कमज़ोर हो गया, उसकी ताकत चली गई। अहंकार जागा है, अच्छा तुझे देखते हैं तो कब तक रहता है, कमज़ोर हो गया, उसकी ताकत खत्म हो गई, सिर पर नहीं चढ़ेगा। ऐसे होते होते स्वभाव बदलना शुरू हो गया। इसलिए शरीर की संवेदना देखते हैं। शरीर की संवेदना ये प्रूफ करती है कि हमारा मानस और हमारा शरीर ये दोनों के दोनों अनित्य हैं, नश्वर हैं, भंगुर हैं, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इस संवेदना के रूप में बदलते हैं कि उस संवेदना के रूप में बदलते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अरे तो बदलता रहता है, उसको क्या अच्छा माने, उसको क्या बुरा माने। साधना करते 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 कभी बड़ा बड़ी अप्रिय संवेदना आएगी, पीड़ा आएगी, भारीपन आएगा, दबाव आएगा, गर्मी आएगी, तो समता से देखता है, हमेशा रहने वाली नहीं है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, परिवर्तनशील है, देखें कब तक रहती है, देखें कब तक रहती है। बस उसकी ताकत कम होने लगी, निकल गई, उसके प्रति द्वेष नहीं जगाया, समता रखी। ऐसे ही सुखद संवेदनाएं, क्या सुखद संवेदनाएं, सारे शरीर में रोमांच हो रहा है, सारे शरीर में पुलक रोमांच है, बड़ा आनंद है, बड़ा ये भी अनित्य है, एक उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, इसके प्रति राग न जाग जाए। तो सुखद आया तो राग नहीं जगने दें, दुखद आया तो द्वेष नहीं जगने दें, ये दो मोटे विकार हैं, सबसे मोटे विकार हैं। बाकी सारे विकार इसके संतान हैं, इन दोनों की, राग द्वेष, राग द्वेष, प्रतिक्षण जगाते हैं। जागते हों कि सोए हों, खाते हों पीते हों चलते हों फिरते हों, हर अवस्था में शरीर में कोई ना कोई संवेदना जागती है, सुखद जागती है, दुखद जागती है, कई कारणों से सुखद जागती है, दुखद जागती है। सुखद संवेदना जागी राग जगाएंगे, दुखद संवेदना जागी द्वेष जगाएंगे। भीतर ही भीतर व्याकुल ही व्याकुल, ऊपर ऊपर के मन को भरमाए रखते हैं, ये दुनियादारी में भरमाए रखते हैं, इसमें थोड़ा मन लगा दिया, उसमें लगा दिया, इसमें लगे रहे, भीतर तो आग जल रही है, आग के अंगारे भरे पड़े हैं भीतर, और ऊपर मोटी मोटी राख है, उस राख की परत में भरमाए रहते हैं। हमें क्या है, कोई तकलीफ नहीं है, हमें क्या है, कोई अंदर देखेंगे तो अरे जल रहा है, तू देख तो जल रहा है, प्रतिक्षण जल रहा है। राग जगाता है तो जलता है, द्वेष जगाता है तो जलता है, जलन ही जलन, जलन ही जलन। देखना आ जाए तो जलन कम होते 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 निकल गई, तो जो शांति आई वो सही शांति आई, जो सुख आया वो सही सुख आया, अन्यथा भ्रम है। हमने अपना मन बहलाने के लिए कोई टीवी खोल ली, कहीं और किसी मनोरंजन में चले गए, या ऐसी धर्म सभा में बैठ करके धर्म सुन लिया, मन बहला गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, क्या बात बनी, तेरे भीतर का विकार तो नहीं निकला ना, तेरे भीतर के विकार को निकालने के लिए क्या किया, ये तो ऊपर ऊपर के मन को बहलाने के लिए किया, ठीक अच्छा है, कुछ नहीं से तो अच्छा है, इतनी देर मन हमारा ऊपर का मन तो जरा शांत रहा, अच्छी बात है, भीतर क्या, ज़्यादा बड़ा हिस्सा तो उस भीतर वाले मन का है, और वो जल रहा है, वो व्याकुल हो रहा है, उसमें तनाव ही तनाव है, और वो तनाव बढ़ाए जा रहे हैं, वो व्याकुल तो बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि भीतर ही भीतर जब देखो कुछ अच्छा लगा राग जगाया, कुछ बुरा लगा द्वेष जगाया, और अच्छा लगा बुरा लगा ये तो होते रहते हैं, सारे शरीर में होते रहते हैं, सोते हुए होता है, जागते हुए होता है, खाते हुए होता है, पीते हुए होता है, चलते हुए होता है, बैठे हुए होता है, लेटे हुए होता है, प्रतिक्षण हो रहा है, और प्रतिक्षण ये पागल मन प्रतिक्रिया करता है, राग की प्रतिक्रिया करता है, द्वेष की प्रतिक्रिया करता है, उसको कैसे सुधारें। तो हमारे देश के महापुरुषों ने ये विद्या ढूंढ निकाली, कि अपने भीतर जहाँ जागता है वहाँ पहुँचो, विकार जहाँ जागता है जड़ों तक जाओ, और मन की जड़ें शरीर की संवेदना से जुड़ी हुई हैं। शरीर की संवेदना मन में विकार जगाती है, मन में जागा हुआ विकार शरीर में संवेदना जगाता है, एक दूसरे को मदद करते हैं, और व्याकुलता पर व्याकुलता, व्याकुलता पर व्याकुलता। ये कोई थ्योरी की बात नहीं है, फिलॉसफी की बात नहीं है, प्योर साइंस है। माइंड और मैटर के इंटरेक्शन का साइंस है। कैसे हमारा चित्त हमारे शरीर को प्रभावित करता है, कैसे हमारा शरीर हमारे चित्त को प्रभावित करता है, और हमें पता तक नहीं। कठिनाई तो ये कि हर आदमी सुख का जीवन जीना चाहता है, शांति का जीवन जाना चाहता है, और प्रतिक्षण दुख जगाया जा रहा है, अशांति जगाया जा रहा है, बेचैनी जगाया जा रहा है। वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, किए जा रहा है। इसी को हमारे यहाँ अविद्या कहा, इसी को हमारे यहाँ अज्ञान कहा। ये पुस्तकों वाला ज्ञान नहीं काम आएगा, ये प्रवचनों वाला ज्ञान नहीं काम आएगा, भीतर का अपना ज्ञान जागेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान। उसे हमारे यहाँ प्रज्ञा कहा, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्राय ज्ञान नहीं। प्राय ज्ञान हमें मार्गदर्शन करेगा, प्राय ज्ञान हमें प्रेरणा देगा, लेकिन ज्ञान अपना जागेगा, अपनी अनुभूतियों से जागा, वो हमारा कल्याण करेगा, मुक्ति देगा हमें। क्योंकि अपनी अनुभूतियों से जानने लगे, विकार जागते ही मैं पहले मैं व्याकुल होता हूँ, तो जीवन में धर्म आने लगा। बात समझ में आने लगी, मैं किसी व्यक्ति को दुखी नहीं बना सकता, मैं शरीर और वाणी का कोई दुष्कर्म कर ही नहीं सकता जब तक कि पहले अपने आप को दुखी न बना लूं। कैसे कोई समझेगा, अंदर देखे बिना कैसे समझेगा। पुब्बे हनति अत्तानं पच्छा हनति सो परे, पहले अपनी हत्या करता है, अपनी सुख शांति की हत्या करता है, फिर किसी दूसरे की सुख शांति की हत्या करता है। लॉ ऑफ नेचर है ये, हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला, और आज विश्व के सारे वैज्ञानिक स्वीकार करने लगे कि बात तो यही ठीक है। बड़े बड़े फ्रायड और जंग और जितने थे साइकोलॉजिस्ट, अरे ये तो हमने समझा ही नहीं, ये अब समझ में आई बात। उनके चेले कहते हैं अब समझ में आई बात। भारत के वैज्ञानिक महान वैज्ञानिक थे, पुब्बे हनति अत्तानं पच्छा हनति सो परे। तो धर्म जो सदाचरण का है कि अपने शरीर से अपनी वाणी से कोई ऐसा काम मत करो जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, जिससे अन्य प्राणियों का अमंगल होता हो, अहित होता हो, तो हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ बोल के किसी को मत ठगो, कड़वी कठोर बात कड़वी बात मत बोलो, नशा पता मत करो। ये हमारे देश का धर्म, सारे विश्व का धर्म, विश्व धर्म है। हमारे देश में विशेषता ये हुई कि तुम हत्या करके, चोरी करके, व्यभिचार करके, झूठ बोल के, कड़वी बात बोल करके किसी का मन दुखाते हो, सुख शांति उसकी भंग करते हो, तब तक नहीं कर पाओगे जब तक पहले अपने को दुखी न बना लो। कैसे होगा, हमने किसी की हत्या की कैसे करेंगे। हत्या करने के पहले हमको हमारे मन में क्रोध जगाना पड़ेगा, द्वेष जगाना पड़ेगा, बहुत गहरा दुर्भावना जगानी पड़ेगी, तब न किसी की हत्या करेंगे। मन में बहुत प्यार जागेगा और हम हत्या करेंगे, कभी होने वाली बात है। बड़ा द्वेष जगाएंगे, बड़ा क्रोध जगाएंगे, तब किसी की हत्या करेंगे, उसकी हत्या तो पीछे की, अपनी सुख शांति की हत्या पहले कर दे। जैसे ही क्रोध जगाया हमारी सुख शांति गई, हमने अपनी हत्या कर दी। चोरी करेंगे कैसे करेंगे, पहले मन में बहुत तृष्णा जगानी पड़ेगी, लोभ जगाना पड़ेगा, लालच जगाना पड़ेगा, और अच्छा विपश्य देखेगा, अरे भीतर की शांति खत्म। जैसे ही लोभ जगाया भीतर की शांति खत्म, मन का संतुलन खत्म, मन की क्षमता खत्म, क्या करने लगा, व्याकुल हो गया। उसको व्याकुल पीछे करेगा, पहले अपने आप को व्याकुल करेगा। इसी तरह से शरीर और वाणी से कोई भी दुष्कर्म करे, पहले अपने मन में विकार जगाना होगा, और विकार जगाएगा तो अपने आप को व्याकुल बनाएगा, दुखी बनाएगा, तो पहले अपनी सुख शांति भंग करेगा, फिर दूसरे की सुख शांति भंग करेगा। और है कोई दुनिया में ऐसा आदमी जो अपनी सुख शांति भंग करना चाहता है, कोई नहीं। सब सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ना समझी से करते तो ये है कि हमको दूसरे को दुखी बनाना है, क्योंकि उसने हमारे साथ अन्याय किया, उसने हमारा अपमान किया, उसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, हम उसको दुखी बनाना चाहते हैं। उसको दुखी बनाने के पहले तो खुद दुखी होने लगा ना, तूने विकार जगा लिया ना। ये उपदेशों की बात नहीं, ये अनुभूति की बात। जैसे जैसे शरीर की संवेदना देखने में परफेक्ट होते चले जाओगे, सांस को देखने में परफेक्ट होते चले जाओगे, वैसे वैसे कोई भी दुष्कर्म करने के पहले एक चेतावनी मिलेगी, क्या करने लगा मैं। हत्या करने के पहले चेतावनी मिलेगी, चोरी करने के पहले चेतावनी मिलेगी, व्यभिचार करने के पहले चेतावनी मिलेगी, झूठ कपट करने के लिए चेतावनी मिलेगी, कड़वी बात करने के लिए चेतावनी मिलेगी। भीतर की केमिस्ट्री बदल गई, सारा रसायन बदल गया भीतर का, हम व्याकुल हो गए। तो ये जो भीतर का रसायन बदलता है हमारा विकार जागते ही, इसको जानने की विद्या है। और भारत इस विद्या में इतना परफेक्ट हो गया था कि विश्व में फैली, भारत से बाहर गई तो जहाँ गई उपदेश देती हुई नहीं गई, मैं बर्मा का व्यक्ति, बर्मा में जन्मा, बर्मा में पला, वहाँ के इतिहास को, वहाँ के लोगों के पुराने इतिहास को खूब जानता हूँ। भारत से जब ये विद्या लेकर कोई गए सम्राट अशोक के समय, तो जाके उपदेश नहीं दिया, ऐ दुनिया के लोगों तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, अमुक नहीं कर... और बहुत सुना था उन्होंने पहले भी, अब ये क्या है हमको उपदेश देने के लिए, कोई सुनता भी नहीं। यही बताया कि चोरी करने के पहले तो अपनी हानि करेगा, हत्या करने के पहले तो अपनी हानि करेगा, जो विचार करने के पहले तो अपनी हानि करेगा, तू देख तो सही हम विद्या लाए हैं, उस विद्या से तू देखते देखते अपना स्वभाव बदल लेगा, तू सुखी हो जाएगा, औरों को सुखी बना लेगा। ये पहला उपदेश था, करना सिखाया। इस मारे विश्व में फैली और इस मारे आज विश्व में फैल रही है। दुनिया का कोई ऐसा प्रमुख देश नहीं है जहाँ पर लोग विपश्यना नहीं करते, दुनिया का कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जिसके फॉलोअर विपश्यना नहीं करते, सबको अपनी बात लगती है। सदाचार का जीवन जीना, मन को संयमित रखना, मन को निर्मल रखना, उसे सद्गुणों से भरना, सभी परंपराओं की शिक्षा है। संसार में कोई ऐसी धार्मिक परंपरा नहीं है जो यह न कहती हो कि सदाचार का जीवन जियो, मन को वश में रखो, मन को निर्मल करो। सब कहते हैं कैसे करें, ये विद्या नहीं। तो ये विद्या जो आती है बड़े खुश होती है। मुझे याद है आज के 25 वर्ष पहले सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरी की दो महिलाएं, एक पुरुष, उनका बहुत बड़ी उम्र के दो नंस और एक पादरी आए, शिविर में बैठे। शिविर खत्म हुआ तो कहते हैं वो इनका, यू आर टीचिंग क्रिश्चियनिटी इन द नेम ऑफ बुद्ध, उनको अपना लगता है ये तो हमारा ही है, तुम जो सिखा रहे हो हमारा ही है। जैन मुनि आते हैं, हिंदू सन्यासी आते हैं, बौद्ध भिक्षु आते हैं, मुसलमान मौलवी आते हैं, ये तो हमारा ही है। सदाचार का जीवन जीना है। कोई दुनिया में ऐसी धर्म परंपरा जो कहे सदाचार का जीवन मत जियो? है कोई ऐसी धर्म परंपरा जो कहे कि मन को वश मत रखो? है कोई ऐसी धर्म परंपरा जो कहे कि मन को निर्मल मत करो? अरे सब कहते हैं, सब धर्म परंपराओं में ये सार है। कठिनाई ये है, ये सार तो भीतर है और ऊपर ऊपर की खोल वो अलग 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 अलग। ये जो भीतर का सार है वो सबका एक ही है, सारे संसार का एक ही है, विश्व धर्म है, ये सबका है। लेकिन ऊपर की खोल सबकी अलग अलग, अपनी अलग अलग, अपने अलग अलग कर्मकांड, अपनी अलग अलग वेशभूषा, अपनी अलग अलग पूजा, अपना अलग अलग व्रत उपवास, अपने अलग अलग तीज त्यौहार पर्व उत्सव, अपनी अलग अलग दार्शनिक मान्यता, ये सब अलग अलग तो रहे अलग अलग, उसमें क्या हुआ? लोग खुश रहे, अपने अपने कर्मकांड में खुश रहे, अपने अपने दार्शनिक मान्यता में खुश रहे, ये भीतर का सार तो नहीं छोड़े। भीतर का सार कायम हुआ तो धार्मिक हो गए, हिंदू हैं तो धार्मिक हिंदू है, जैन है तो धार्मिक जैन है, बौद्ध हैं तो धार्मिक बौद्ध हैं, मुस्लिम है तो धार्मिक मुस्लिम है। धार्मिक हो गए तो अच्छे इंसान हो गए, भले आदमी हो गए, न अपना बुरा करते हैं न औरों का बुरा करते हैं। धर्म का जब सार छूट जाता है और ये ऊपर ऊपर की बातें ये प्रमुख हो जाती हैं तो हानि हानि होती है। कि जितने झगड़े फसाद वाद विवाद मारकाट कत्लेआम होता है ऊपर की बातों का होता है। हमारी ये मान्यता थी, तेरी ये मान्यता, हमारी मान्यता मानेगा तो तर जाएगा, मुक्त हो जाएगा। हमारे नहीं मानेगा तुम्हारा जाएगा, इसलिए मैं तुमको कन्वर्ट करता हूँ, मेरे में कन्वर्ट हो जा, हमारे में कन्वर्ट हो जा। अरे बाबा कन्वर्शन ही भूल गए, कन्वर्शन होना चाहिए हैवानियत से इंसानियत में। हैवान का जीवन जी रहे हो, पशुओं का जीवन जी रहे हो, मनुष्य का जीवन जीना सीखो, ये कन्वर्शन हो। क्रोध का जीवन जी रहे हो, करुणा का जीवन जियो, ये कन्वर्शन सीखो। दुष्कर्मों का जीवन जी रहे हो, सत्कर्मों का जीवन जीना सीखो, ये कन्वर्शन हो। सबके लिए एक जैसा कन्वर्शन है। इस संप्रदाय से उस संप्रदाय में दीक्षित हो जाओ तो कन्वर्शन हो गया, तो क्या मिला? कल तक ये नाम था, आज दूसरा नाम रख लिया, क्या मिला? आदमी बदला नहीं रहा, आदमी को बदलना है। ये भारत की महानता थी जो फिर जाग रही है, इसी में कल्याण है। अपने आप को चाहे जिस नाम से पुकारो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अपना जीवन ऐसा जिए जिसमें हमको भी सुख शांति मिले, औरों को भी सुख शांति मिले, और ये बात केवल उपदेशों की होकर न रह जाए, ये बात केवल वाणी विलास और बुद्धि विलास की होकर न रह जाए, ये जीवन में उतरे। और जीवन में उतरने का रास्ता, इतना सरल रास्ता, अपने जीवन के दस्ते तो देने पड़ते हैं सीखने के लिए। फिर हर आदमी अपना मालिक, किसी गुरु गुरु के चंगुल में नहीं पड़ना, नहीं तो एक्सप्लोटेशन शुरू कर देगा गुरु, ये लाओ वो लाओ, हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए, दुकानदारी शुरू हो जाएगी। कभी नहीं, एक विद्या सीखने के लिए किसी के पास गए, विद्या सीख ली, फिर अपने पांव पकड़े होना। धर्म हमें स्वावलंबी बनाता है, परावलंबी नहीं। अपने पांव पकड़ा होना है, कोई बात न समझ में आए तो फिर पूछ ले, ये अलग बात हुई, लेकिन हमें अपने पांव पर खड़ा होना है। हमें प्रज्ञा जगानी है, माने प्रत्यक्ष ज्ञान जगाना है। परोक्ष ज्ञान केवल गाइडेंस देने के लिए, परोक्ष ज्ञान केवल प्रेरणा देने के लिए। हमारा अपना ज्ञान जागेगा वो सुधारेगा हमको, तो हमारी अनुभूतियों से हमारा ज्ञान जागे। देख क्या होने लगा, देख क्या करने लगा मैं, देख भीतर क्या होने लगा, मैं अपनी हानि करने लगा, मैं अपने को दुखी बनाने लगा। कौन चाहेगा अपने को दुखी बनाना? दुखी बनाया जा रहा है, और होश नहीं है कि मैं दुखी बनाया जा रहा हूँ। जब ये अनुभव होना शुरू हो जाएगा, मैं दुखी बना रहा हूँ, अपने आप को दुखी बना रहा हूँ, कोई दुखी नहीं बनाएगा। मैं कभी उदाहरण देता हूँ, एक छोटा बच्चा, नादान बच्चा, अंगारे पड़े अंगीठी में जलते हुए, वो देखता है, उसको लगता है कि ये तो लाल लाल खिलौने हैं, तो जाता है उस पर पकड़ने के लिए, माँ रोकती है, अरे ये अंगारे हैं जलेगा, रोकती है, वो रोता है, फिर जाता है, फिर माँ रोकती है। एक बार ऐसा हुआ, माँ नहीं है घर में, अंगारे की ओर गया, छू लिया उसे, छू लिया तो जला तो रोया जोर से, छू लिया ना रोया जोर से। ऐसा एक बार करेगा, दो बार करेगा, उसको होश आ गया, अपनी अनुभूति है ना, अब तो माँ की बात नहीं है, खुद करके देख लिया ना, छूता है तो गर जलता है, वो अंगारा है, जलाएगा। ऐसे ही जिस दिन खुद अनुभूति करने लगोगे कि अंगारा है, जलाता है, विकार जलाता है मुझे, विकार मुझे व्याकुल बनाता है, तो विकारों से छुटकारा होना आसान हो जाएगा। नहीं तो माँ की तरह कहने वाला हजार कहता रहेगा, अरे अंगारा है जलाएगा तुझे, तो विकार मत जगा, तेरे लिए अच्छा नहीं है, कोई नहीं सुनता। अनुभूति इसीलिए महत्वपूर्ण है, प्रज्ञा इसीलिए महत्वपूर्ण है। अपना प्रत्यक्ष ज्ञान जागना चाहिए, अनुभूति वाला ज्ञान जागना चाहिए। और किसी का ज्ञान हमें मार्गदर्शन भले कर दे, हमें प्रेरणा भले दे दे, ज्ञान तो अपना जगाना पड़ेगा, अपना ही जगाना पड़ेगा। और ये प्रयत्न करने से होता है, केवल बुद्धि से समझ लें तो बात नहीं बनती। बुद्धि से तो मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, इतनी बात सुनेगा तो बात समझ में आएगी, बात ठीक है। हम अपने को दुखी क्यों बनाएं? हमें दुखी नहीं बनाना चाहिए, अपने आप को फिर भी बनाया जाएगा, बनाया जाएगा, अनुभूति पर उतरना शुरू हो जाएगा, तब देखो स्वभाव बदलने लगा, स्वभाव बदलने लगा। सारे दुखों के बाहर निकलने के लिए एक ऐसी वैज्ञानिक विद्या अपने देश में जागी, बहुत पुरानी विद्या है, बुद्ध ने तो खोज निकाली पुरानी बात को, पुब्बे अनुसुते सुधम्मे सुचक्षु उत्पादी, कभी सुना ही नहीं। ऐसे धर्म में मेरे चक्षु खुले, मेरा ज्ञान खुला, मेरी प्रज्ञा खुली, तो सुना नहीं। लेकिन पौराणो मग्गो ए समग्गो सनंतनो, बहुत पुराना मार्ग है,
खो गया, लोग भूल गए, और कर्मकांडों में पड़ गए, और दार्शनिक मान्यताओं में पड़ गए, और वेशभूषाओं में पड़ गए, जो सही बात थी धर्म की कि हम कैसे विकारों से मुक्त हों, चित्त को कैसे वीतराग बनाएं, वीत द्वेष बनाएं, वीत मोह बनाएं, वीत भय बनाएं और निर्मल करें, ये भूल गए। बातें रह गई इसकी, करना भूल गए। तो करना खोज निकाला, अपना कल्याण किया, औरों का कल्याण किया, आज भी लोगों का कल्याण होता है। इतनी बड़ी विद्या है कि हर तरह के दुखों से हमें मुक्त कराती है, और दुख तो आते ही रहते हैं। कोई भी दुख आएगा, किसी बात को लेकर व्याकुलता आई, क्या हो जाएगा इस भय को लेकर के व्याकुलता आई, अपने में एक हीन भावना आ गई, अरे मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, हीन भावना की व्याकुलता आई, या ऐसी व्याकुलता है कि अरे सब अंधकार ही अंधकार दिखता है, हमको तो कहीं प्रकाश दिखता ही नहीं, बड़ी निराशा आ गई, इसकी व्याकुलता आई। जो भी कुछ आया शरीर पर संवेदना लेकर आएगा, और ये विद्या सीख जाओगे संवेदना देखने लगे, इस समय व्याकुलता आई है और शरीर में ये संवेदना है, ये सेंसेशन है, ये व्याकुलता है, ये सेंसेशन है, अनित्य है, अनुभव से जानते हैं सेंसेशन है वो अनित्य है, तो जो व्याकुलता आई है वो भी अनित्य है। देखते हैं कितनी देर रहती है, देखते हैं कितनी देर रहती है, तो हमारा सिर पानी के ऊपर है, शरीर डूबा हुआ है, धीरे धीरे उसके बाहर निकल जाएंगे, और सिर भी पानी के नीचे चला गया तब कैसे बाहर निकलेंगे। तो एक हिस्सा मानस का उसे देख रहा है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, कहाँ उलझ गए, किसको अच्छा माने जा रहे हैं, किसको बुरा माने जा रहे हैं, ये तो बदलने वाला स्वभाव है, शरीर और चित्त दोनों के दोनों नश्वर है, हम किसमें उलझ गए, इसके बाहर निकलना है, इसके बाहर निकलना है। दृष्टा भाव आया कि बाहर निकलने लगे, भोगता भाव आया कि उसमें डूबने लगे, तो भोगता भाव टूटता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, समता भाव, तटस्थ भाव बलवान होता जाएगा, हम बाहर निकलने लगे, बाहर निकल लगे। बड़े बड़े क्रोधी कैसे क्रोध के बाहर निकल गए, बड़े बड़े वासना में व्याकुल रहने वाले कैसे बाहर निकल गए, बड़े बड़े शराबी कैसे बाहर निकल गए, बड़े बड़े जुआरी कैसे बाहर निकल गए। आसान है, लोग आते हैं कि विपश्यना से हमने सुना व्यसन निकल जाते हैं, मुझे शराब का व्यसन है, कोई रास्ता है, यही रास्ता है भाई। ऊपर से लगता है कि तुझे शराब का व्यसन है, शराब का व्यसन नहीं है, शराब पीने से तेरे शरीर में जो सेंसेशन होती है उसका व्यसन है, वो सेंसेशन तुझे अच्छी लगती है, तेरे अंतर्मन को वो बड़ी अच्छी लगती है, और तू फिर शराब मांगता है, उसको बहुत अच्छी लगती है फिर शराब मांगता है। तो आसक्ति इन सेंसेशन के प्रति है, इसको देखना सीख, सीखते सीखते कोई एक शिविर में कोई दो शिविर में बाहर निकल जाता है, ड्रग का अडिक्ट है देखते देखते बाहर निकल गया। ऐसे ही इन मादक पदार्थों का क्या कहें, ये सारे के सारे हमारे मन के विकार हैं, हमको अडिक्ट करते हैं। क्रोधी आदमी क्रोध में अडिक्ट है, वासना वाला वासना में अडिक्ट है, भय वाला भय में अडिक्ट है, अडिक्शन ही अडिक्शन है, कैसे निकले ये संवेदना देखें। जिस वक्त भी कोई ऐसा विकार जागा, संवेदना देखनी शुरू की, संवेदना देखनी शुरू की, कैसे देखोगे, उसका एक अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस प्रैक्टिस के लिए जीवन के 10 दिन देने पड़ते हैं, और ये सीखना पड़ता है, उसके बाद रोज इसमें पकते जाओ। जैसे शरीर की कोई कसरत सीखते हैं और फिर घर आकर सुबह शाम करते हैं तो शरीर हमारा बलवान रहता है, ऐसे मन की कसरत है, मन को बलवान बनाना है। कसरत सीख करके आए, सुबह शाम उसे अपनाया और देखा जीवन भर दिन भर वो हमारे काम आती गई, हमारा जीवन बदलना शुरू हो गया, हमेशा व्याकुल रहने वाला आदमी व्याकुलता के बाहर निकलने लगा। जो जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। गृहस्थ के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी अनचाही मनचाही होती है, और बेचारा व्याकुल होता है, समता नहीं रख पाता। गृहस्थ के जीवन में इतनी ज़रूरत है उसे, जो सन्यासी है घर बार छोड़ा है उसको तो यही काम करना, और करना क्या है, वो न करे तो ये उसकी नादानी है। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिनके सिर पर जितनी जिम्मेदारी है उनको उतनी ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी जिम्मेदारी है उतना तनाव है, जितनी जिम्मेदारी है उतना भीतर से व्याकुल है, व्याकुलता दूर हो जाएगी, तनाव निकल जाएगा, तो काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी। मैं अपने अनुभव से नहीं, हज़ारों के अनुभव से कहता हूँ, जो व्यापारी चीफ एग्जीक्यूटिव दुनिया के आते हैं शिविरों में, आते हैं और देखते हैं, कह रहे 10 दिन में इतना परिवर्तन आ गया मुझ में, इतना परिवर्तन आ गया, और सरकार कहती है अपने एग्जीक्यूटिव्स को, सेक्रेटरी लेवल लोगों को, जाओ विपश्यना करो, 15 दिन की 14 दिन की छूट देती है विद पे, जाओ करो, क्योंकि परिवर्तन आ गया, ये आदमी की काम करने की शक्ति बढ़ गई। कितनी शांति के साथ, जो काम 8 घंटे करके व्याकुल हो जाता था, थकान के मारे बुरा हाल होता था, अब वही काम 6 घंटे में पूरा हो गया, 8 घंटे में और काम करने लगा और घर जाता तो बड़ा फ्रेश है, कहीं कोई तनाव नहीं, जीवन ही बदल गया, जीवन जीने की कला आ गई। तो जीवन जीने की कला के लिए कोई ना कोई अभ्यास, कोई ना कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोरे उपदेशों से नहीं होता। तो आज की इस सभा को बुद्धि विलास की सभा न बनने दें, श्रुति विलास की सभा न बनने दें, वाणी विलास की सभा न बनने दें। मन में एक संकल्प करना है कि हमें अपने जीवन के 10 दिन दे करके ये विद्या सीखनी है। किसी परेशान नहीं कर रहे, अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए। इस परंपरा में जो धर्म सिखाने वाला है उस पर एक बहुत कड़ा प्रतिबंध है कि वो कभी दान के लिए हाथ नहीं पसारेगा, कुछ नहीं मांगेगा, ये नियम है, ये परंपरा है। लेकिन मैं इस परंपरा को तोड़ता हूँ और मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ, अरे तुम्हारे अनमोल जीवन के अनमोल 10 दिन दो मुझे, ये 10 दिन की भेंट दो, अपने भले के लिए दो, अपने कल्याण के लिए दो, अपने मंगल के लिए दो, और कौन जाने तुम्हारे जरिए से अनेकों का मंगल होने लगे, अनेकों का कल्याण होने लगे, तो अनेकों के मंगल के लिए, अनेकों के मंगल भले के लिए अपने जीवन के 10 दिन दान में दो, खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा, स्वस्थ होगी, मुक्ति होगी। आपने विकारों से बाहर निकलने के लिए विपश्यना ध्यान करने की बात कही, पर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे केवल ध्यान तो नहीं कर सकता, कुछ भजन कीर्तन भी करवाते हैं आप? बहुत भजन कीर्तन किया भाई, बहुत भजन कीर्तन करवाया, 31 वर्ष की उम्र तक लगे रहे इसमें, बुरा नहीं मानता, उससे हमें लाभ हुआ, लेकिन लाभ केवल ऊपर ऊपर के चित्त को होकर रह गया, भीतर का स्वभाव वैसा का वैसा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए ये विद्या मिली तो भजन करो, कीर्तन करो, लेकिन इस विद्या को साथ रखो, बहुत कल्याण होगा, इसे मत भूलो। क्या विपश्यना में थॉट्स और इमोशंस को भी ऑब्जर्व करना सिखाते हैं? क्या इनके डिसऑर्डर से भी छुटकारा मिल सकता है? इसके डिसऑर्डर से छुटकारा पाने के लिए ही विपश्यना है। इमोशन जागेगा, बिना शरीर बॉडी पर सेंसेशन के बिना जाग नहीं सकता, तो इमोशन जागा, किस बात को लेके जागा उसमें नहीं जाए, उसके डिटेल में नहीं जाए, इमोशन जागा है और क्या सेंसेशन है, ये अनित्य है, सेंसेशन अनित्य है, रोज अनुभव करते हैं, साधना करते करते अनुभव होने लगा, इमोशन भी अनित्य है, देखें कितनी देर रहता है, देखें कितनी देर रहता है, उसके ताकत कम होते 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 निकल जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। संवेदना को छोड़ करके हम उसे निकालना चाहें तो जड़ों से नहीं निकाल पाएंगे। विपश्यना ध्यान करने पर, विकारों के न रहने पर क्या मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी? काहे का बंधन है, विकारों का बंधन है, और किसने बांध रखा हमको? कोई रस्सियों से नहीं बांध रखा हमको, कोई हथकड़ियों से नहीं बांध रखा, बेड़ियों से नहीं बांध रखा, ये विकार है जो हमारे बंधन है। विकार निकले कि हम मुक्त हुए, तो मुक्त होने के लिए विकार को निकालना है। अब आत्मा मुक्त होती है, ये कौन मुक्त होता है? मुक्त होता है, विकार निकालो, मुख्य बात यह है। मैंने सुना है विपश्यना शिविर में 9 दिन मौन रखना होता है और सुबह से लेकर रात तक ध्यान करना होता है, क्या ये हम जैसे सामान्य लोगों के लिए कठिन नहीं है? जो विपश्यना में आता वो सामान्य लोग ही तो आता है, कहाँ स्पेशल लोग आते हैं, कौन स्पेशल लोग आएगा? मैं भी तो सामान्य व्यक्ति था, गया तो सामान्य होता है, सामान्य से असामान्य बनो, साधारण से असाधारण बनो। लगता है कि मौन कैसे रहूंगा मैं इतनी बात करने वाला, और 9 दिन तक मौन, 9 दिन तक मौन, और जब वहाँ आओगे तो पहले एक दो दिन तो लगेगा कठिन, लेकिन उसके बाद तो कहीं जरा सी आवाज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। दसवें दिन मौन टूटेगा तो कोलाहल होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अरे शांति बहुत बातें की, कुछ तो बिना बात किए भी शांति ढूंढो। तो शांति तब मिलेगी जब मोलना बंद करोगे, बोले जाओगे तो देखोगे मन कितना बोलता है। जब देखो तो बात किए जा रहा है वो, तो उसको और चारा डाल दिया, और बातें करेगा, छुटकारा कैसे होगा। इसलिए 9 दिनों तक मौन रह करके बात कर सकते हैं, बात अपने आचार्य से कर सकते हैं, कोई व्यवस्था में कठिनाई हो तो उनसे कर सकते हैं, परस्पर बात नहीं करनी, इसकी मनाही है। What makes up the I and what is this I? This is what you will understand by practicing what this I is. An imaginary I and tremendous amount of attachment towards this I which makes me so much miserable. All sorts of impurities arise because of this ego. I am living such an ego-centered life, such a self-centered life, and this ego starts getting dissolving and you come out of your misery. Come and experience it. How do I remain positive when I am surrounded by negativity? Those who are negative around you, it is their misery, their problem. Why take their problem on your head? Keep yourself positive. Why worry about others? You can't improve the world, you can improve yourself. So see that you improve yourself and let the world be bad. But as you improve yourself, more and more people will improve themselves and you will find the world is changing. Real peace is coming in the world. मैंने 2 शिविर किए हैं, पर अभी तक अहंकार और क्रोध बेहद आता है। लोगों की तरफ नफरत और गुस्सा रहता है, क्या करूं? तो ठीक से नहीं की विपश्यना। जैसे ही क्रोध आए तो देखो भीतर क्या होने लगा। क्रोध आया है, किसी के प्रति नफरत जागी है, तो शरीर में अप्रिय संवेदना होगी ही, बस उसे देखना सीख जाओ। देख रही हो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, देखोगे क्रोध अपने आप कम होने लगा। 2 शिविर तो किए, पर रोज सुबह शाम कर पाती हो कि नहीं कर पाती हो उसे ख्याल रखो। केवल शिविर कर लेने से बात नहीं बनी, फिर घर में आकर रोज करना पड़ता है, फिर रोज उसको जीवन में उतारने का काम करना पड़ता है। अब उसको जीवन में उतार रहा हूँ कि नहीं उतार रहा हूँ ये देखना पड़ता है, और देखोगे फिर सुधार आने लगा। विपश्यना और मोक्ष किस तरह जुड़े हुए हैं? विपश्यना प्रतिक्षण मोक्ष दिलाती है। मोक्ष किसको कहते हैं? हमारे विकारों से मुक्ति होती है उसको मोक्ष कहते हैं। एक क्षण की विपश्यना उस क्षण के विकारों से मुक्ति दी हमें। जितने जितने क्षण हम विपश्यना कर रहे हैं, सही रूप से कर रहे हैं, उतने उतने क्षण विकारों से मोक्ष हो रहा है, मुक्ति हो रही है। सारे विकार निकल गए, मुक्त हो गए हम, पूर्णतया मोक्ष आ गया, पूर्णतया निर्वाण आ गया। लेकिन काम करने से होगा। आपके जमाने में सास बहू के रिश्ते में क्या बदलाव ला सकते हैं? हम नहीं बदलाव लाते, बदलाव तुम्हें लाना है बेटी। पहले अपने में बदलाव लाओ। हर बहू कहती है कि हमारे घर में बहुत अशांति है। क्यों अशांति है? ये बुढ़िया देखो पुराने जमाने की बातें करती है और आज नया जमाना, इसको अक्ल नहीं है। ये सुधर जाए तो बहुत शांति आ जाएगी। और सास से पूछो, वो कहती है बहू क्या आ गई घर में, ये सारी हमारी पुरानी परंपरा तोड़ रही है, इस हमारे घर में व्याकुलता है, ये सुधर जाए। सास चाहती है बहू सुधर जाए, बहू चाहती है सास सुधर जाए। मैं नहीं सुधरूं, मेरे में क्या खोट है? ये करोगी विपश्यना तो मालूम होगा कि मेरे में खोट है, और मेरा खोट निकला कि घर में शांति आने लगे। संवेदना कल्पनीय है या रियल है ये कैसे जाने? जरूर जानना चाहिए, साधना करने वालों को सिखाते हैं। बहुत बार ऐसा मन में एक ख्याल आता है कि ये जो सारे शरीर में हमको तरंगे जैसे मालूम होने लगी, ये काल्पनिक हो सकती हैं, सही हैं, कैसे जाने? तो कहते हैं कि और दूसरी कोई कल्पना करनी शुरू कर दो। तरंगे हैं तो अब धड़कन आए तो अच्छा है, धड़कन आए, धड़कन आनी शुरू हो गई। गर्मी आए तो अच्छा है, गर्मी आनी शुरू हो गई। यूँ जो जो सजेशन देते हो वो आने लगे तो फेंको, विपश्यना नहीं है, धोखे में हो तुम। और तुम सजेशन दिए जा रहे हो वैसा होता नहीं, तुम सजेशन देते हो वैसा होता नहीं, तो फिर संदेह को दूर करो। जो कुछ है वो वास्तविक है, सारे शरीर में संवेदना होती ही रहती है, जब तक जीवित हैं तब तक होगा ही। आज के व्यस्त जीवन में विपश्यना का भाव जागना कठिन है, आसान रास्ता बताएं। इससे आसान क्या होगा, और क्या आसान रास्ता बताएं? हमारी बात सुन ली और घर में जाकर के कोई कम सांस देखेंगे, क्या देखोगे? एक मिनट में नहीं देख पाओगे। हम संवेदना देखेंगे, क्या संवेदना देखोगे? तो 10 दिन ये विद्या सीखनी है, उसके बाद से जीवन में उतारना है। बहुत सरल है, बहुत आसान है, पर एक बार 10 दिन का समय देना ही पड़ता है। तनाव तो दिन भर रहता है, तो हर पल संवेदनाएं देखते हैं, उसे अनित्य अनित्य कहते जाना है, तो सारा दिन अनित्य कहने में बीत जाएगा। कहना कुछ नहीं है, अनित्य है अनित्य, तो अनित्य एक मंत्र बन जाएगा, मंत्रों से नहीं छुटकारा होता। हम जब जब देखें कि बहुत व्याकुल होने लगे, तो व्याकुलता है और जो संवेदना है ये संवेदना अनित्य है ऐसा अनुभव करेंगे, अनुभव करने से व्याकुलता दूर होगी, और खाली अनित्य है अनित्य अनित्य कहने से व्याकुलता नहीं दूर होती। ह्यूमन रिलेशनशिप भी एक विकार नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं होगा तो जंगल में जाके अकेले रहो, परिवार में रहना है, गृहस्थ हैं, संसार में रहना है, तो ह्यूमन रिलेशनशिप होना ही है। लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप पॉजिटिव हो, उसमें नेगेटिविटी निकल जाए तो सुख से रहने लगे, और नेगेटिविटी नेगेटिविटी है तो स्वयं भी दुखी हैं, औरों को भी दुखी बनाते हैं। ये सारी साधना अंदर से नेगेटिविटी को निकाल कर पॉजिटिव एलिमेंट्स भरने वाली है। मैं एक शिविर में गया था, परंतु संयोगवश मात्र 2 दिन में वापस लौट गया, तो ऐसा संयोग फिर मत आने दो। 10 दिन पूरे किए बिना काम बनता नहीं, ये ऑपरेशन है मन का, और बहुत गहरा ऑपरेशन है। तुम कोई बॉडी के ऑपरेशन कराने जाओ और सर्जन से कहो कि थोड़ा ऑपरेशन हुआ बाकी फिर करा लेंगे, तो कौन तुम्हें जाने देगा? ऐसे ही ऑपरेशन मन का शुरू किया, 2 दिन में हम जाते हैं फिर आएंगे कभी, तो अपनी हानि कर लोगे। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करना कभी। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसे 16 अप्रैल को इगतपुरी शिविर में जाना है, तो पहली बार आ रही है, तो उसे बेचैनी या डिप्रेशन तो नहीं आएगा? बेचैनी और डिप्रेशन होगी तो निकल जाएगा। गर्भवती है तो बहुत बड़े कल्याण की बात है, वो केवल अपने लिए साधना नहीं करेगी, आने वाले बच्चे के लिए भी साधना करेगी। न जाने कितनी माताएं इस प्रकार की आती हैं गर्भवती, खासकर वेस्ट में तो एक बात फैल गई बड़े जोरों से, आई वांट ए धम्मा बेबी, आई वांट ए धम्मा बेबी, और विपश्यना करती है और सदमत धम्मा बेबी मिलता है उन्हें। बहुत शांत संतान मिलती है, बहुत सुखी संतान मिलती है, तो अपने भावी संतान को भी सुखी बनाने के लिए अवश्य काम करना चाहिए, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। फिर तो विपश्यना बचपन से कराएं। हाँ, बचपन से विपश्यना तो नहीं कराते, एक तो कहा ना जब गर्भवती है माँ तब उसको विपश्यना का बीज मिल जाता है, और उसके बाद 7, 8, 9 बरस तक आनापान सिखाते हैं, 2 दिन का 3 दिन का 1 दिन का शिविर बच्चों को, स्कूल के बच्चों को कराते हैं। आगे जा कर के जब 15, 16, 17 वर्ष का हो जाए तो पूरी विपश्यना भी करता है। आपने कहा विकारों को साक्षी भाव से देखो तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, क्या भय जैसा विकार देखने से नष्ट हो जाता है? सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, भय का तो बहुत बड़ा विकार है। मेरे दिमाग में मृत्यु का भय बहुत बार बड़ा गहरा हो जाता है, खास करके जब मेरी तबीयत थोड़ी सी भी खराब होती है। भय का संस्कार सबसे गहरा संस्कार है, क्योंकि असुरक्षा की भावना, क्या हो जाएगा मुझे, क्या हो जाएगा, इनसिक्योरिटी की भावना न जाने कितने जन्मों से लिए चली आ रही, हर प्राणी में होता है, तो इसको निकालने के लिए विपश्यना करनी बहुत आवश्यक है। जब जब भय जागे और विपश्यना में पक जाओगे तो देखोगे, जैसे भय जागा हमने संवेदना देखी, भय जागा हमने संवेदना देखी, भय दूर भाग जाएगा, दोनों एक साथ रह नहीं सकते। Death is decided by whom? Death is decided by birth. When you take birth, as you throw your arrow, with whatever strength you throw, at that point only it will go and fall, not earlier, not later. So death is fixed when the birth comes. But how it will be, that we can't say. So let the death come, but let it be a good death. In Vipassana meditator, you die smilingly. It's the art of dying. One has to learn the art of living, and then one has to know how to live, how to die also peacefully, smilingly, without crying, without becoming unconscious. So that is the way which you will learn by practicing Vipassana properly. संस्थाओं में अच्छा काम करने वालों को लोग बहुत परेशान करते हैं और कठिनाइयां बढ़ाते हैं, तो इनसे दूर रहें या काम करना छोड़ दें? इनसे दूर मत रहो और काम से भी दूर मत रहो। अपने आप को व्याकुलता से दूर रखो। कोई हमें कैसे कठिनाई पैदा करेगा? हम नहीं कठिनाई से व्याकुल होते, वो ये उसका प्रॉब्लम है। जो कठिनाई पैदा करता है, अपने मन में विकार जगा के करता है, तो उस पर दया करो। बेचारा पागल है, इसको होश नहीं है, अपनी हानि करता है। हम नहीं व्याकुल होते, किसी के कुछ करने से हम व्याकुल नहीं होंगे। ऐसा मन दृढ़ बना लोगे तो फिर अपने काम में करने में कठिनाई नहीं आएगी। सभी धर्म का सार एक ही है, तो विपश्यना की विशेषता क्या है? सभी धर्म के सार को सिखाती है, कैसे हम सदाचार का जीवन जिए, कैसे हम मन को कंट्रोल करना सीखें और कैसे हम मन को निर्मल करना सीखें। ये सारे धर्मों का सार है और ये प्रैक्टिकल है जो विपश्यना कराती है। हाउ टू कंट्रोल एंगर और इरिटेशन रेज्ड बाय अदर पर्सन और सिचुएशन, दिस इज व्हाट विपश्यना टीचेज यू। यू कांट चेंज अदर पीपल, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। सिचुएशंस आर सच विच हैव प्रोवोक्ड एंगर इन यू, सो एक्सेप्ट द फैक्ट नाउ देयर इज एंगर। Provoked due to this or that has got no meaning. There is anger at present, and look, with this anger there is a burning sensation, the throbbing is increased, and there is a tension inside. Keep on observing, it will become weaker and weaker, and later on a stage will come, no provocation can arouse anger in your mind. Jeevan par samvedana hi dekhni hogi. Sukh se jeene ke liye jahan avashyak ho, jab avashyak ho, tab samvedana dekhenge. दिन भर संवेदना देखते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? दुनियादारी का काम भी करना है ना सारा। जब जब व्याकुलता आएगी, विकार जागेगा, उस वक्त देखेंगे। शिविर में आओगे तो यही देखना पड़ेगा, 10 दिन तो सीखना पड़ेगा इसे, और उसके बाद इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। हर चीज़ अनित्य है, ये सोचते रहने से जीवन में शुष्कता आने की शक्यता नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। चिपकाव है इसलिए व्याकुलता है, आसक्ति है तो व्याकुलता है। जहाँ आसक्ति टूटी, मन इतना मोद से भर जाएगा, इतना प्रसन्नता से भर जाएगा, इतना मंगल से भर जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा, पॉजिटिविटी पॉजिटिव रह जाएगी जीवन में। इन माय फैमिली आई एम द ओनली पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस्ड विपश्यना। आफ्टर आई केम बैक ए फ्यू डेज आई कुड मेंटेन द बैलेंस ऑफ माय माइंड, बट नाउ Do I maintain this balance consistently? How can I convince others? Don't try to convince others, convince yourself, that's more important. When you continue to practice daily, morning and evening, a change is bound to come in your life, and that will attract others. Others will see what a change is coming in this person. Certainly there is something good in this, and they will get attracted, they will also come. I have seen one member of the family takes Vipassana sooner or later. Every member of the family starts coming there because a change is quite visible, quite apparent. Vipassana aur Reiki Vidya mein kya farak hai? Vipassana hame apne bhitar ki apni vibration swayam dekhni hoti hai, aur Reiki mein koi bahar ki vibration ka input hota hai, isliye dono mein bahut bada farak hai. बाहर के वाइब्रेशन से हमें लाभ हो सकता है, लाभ होता है, कई शारीरिक रोग उससे निकलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विपश्यना के साथ वो जुड़ने नहीं पाए, इससे कठिनाई आती है, कुछ एक केस बहुत बिगड़ गए, हानि हुई, क्योंकि भीतर से हम नेचुरल वाइब्रेशन देखने का काम करते हैं और ये आर्टिफिशियल वाइब्रेशन, पराई वाइब्रेशन उसके साथ इनपुट करते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, उससे बचना चाहिए। शरीर की संवेदना का श्वास प्रश्वास तथा मन के विकार विचार से विपश्यना के बाद आत्मा के संस्कार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तुम करोगे 10 दिन तो मालूम होगा क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी संस्कार हम बनाते हैं और जो संस्कार बुरे हैं, हम देखेंगे कैसे वो निकलते जा रहे हैं, हमारा कल्याण हो गया। जितने जितने बुरे संस्कार हमारे भीतर हैं, उतना उतना दुख हमें आना स्वाभाविक है। हमारे ही अपने कर्म संस्कार हमारे लिए दुख लेकर के आते हैं, कोई दूसरा आदमी बाहर का हमें दुख नहीं दे सकता। टाइप ऑफ सेंसेशन, वेदर ग्रॉस और सटल, व्हाट डज इट रेफर टू द टाइप ऑफ डिफाइलमेंट, डोंट गो इन द डिटेल। व्हाट एवर डिफाइलमेंट अराइजेज इन योर माइंड एंड एट दैट मोमेंट व्हाट एवर सेंसेशन यू हैव इज रिलेटेड टू दैट डिफाइलमेंट, इट मे बी ग्रॉस, इट मे बी सटल, नथिंग डूइंग। व्हाट एवर सेंसेशन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द सेंसेशन, अनित्य अनित्य अनित्य, एंड यू विल फाइंड दैट पार्टिकुलर डिफाइलमेंट इज बिकमिंग वीकर एंड वीकर एंड इट पासिस अवे। मोक्ष और मुक्ति का मार्ग क्या है, यही तो है। फिर बार बार कहते हैं ना, क्या मोक्ष, किससे मोक्ष, विकारों से मोक्ष, किससे मुक्ति, विकारों से मुक्ति। विकारों को दूर करने का नाम ही मोक्ष है। सारे विकार निकल गए तो मुक्त हो गए हम, जीवन मरण से मुक्त हो गए। जब तक विकार है तब तक तो ये भव चक्र चलेगा, इसी प्रकार चलेगा, ये जीवन भी दुख में बीतेगा और आगे जीवन भी दुख ही दुख के आएंगे। इन विकारों से छुटकारा पाना ही मुक्ति है, यही मोक्ष है। जब गवर्नमेंट या अन्य डिपार्टमेंट की नोटिस आती है तब मन में भय जागता है, व्याकुल हो जाते हैं, यही निकालने के लिए। व्यापारी हो, न जाने कितने कारण होते हैं भय जागने के, इनसिक्योरिटी के। विपश्यना कर लोगे तो भय दूर होगा, इनसिक्योरिटी की फीलिंग दूर होगी, बड़ा बल आएगा, हर काम अच्छी तरह कर सकोगे, क्विक डिसीजन होगा, राइट डिसीजन होगा, अपने आप रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। क्या भक्ति से, ईश्वर की प्रार्थना करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, ईश्वर नहीं प्राप्त होंगे? भक्ति से अवश्य मुक्ति मिलती है, एक सीमा की मुक्ति मिलती है। चित्त का ऊपर ऊपर का हिस्सा जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, चेतन चित्त कहते हैं, वो एक अच्छी दिशा में लगा, शांत हुआ, निर्मल हुआ, एकाग्र हुआ, बड़ी अच्छी बात। भीतर स्वभाव वैसा का वैसा, अंतर्मन की गहराइयों में जहाँ जड़ें हमारे विकारों की, वो निकले बिना छुटकारा होता नहीं, तो वहाँ तक जाना बहुत आवश्यक है और विपश्यना हमें वहाँ तक ले जाती है। व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट कर्म एंड व्हेन डू वी अचीव इट्स रिजल्ट, एनी एक्शन ऑफ द माइंड इज ए कर्म, द एक्शन ऑफ बॉडी एंड द एक्शन ऑफ वर्ड्स इज सेकेंडरी, इट जस्ट फॉलोज द एक्शन ऑफ द माइंड। एंड एज सून एज यू टेक एन एक्शन इन द माइंड, द रिजल्ट इज देयर। यू टेक एन नेगेटिव एक्शन एंड यू फाइंड यू आर फीलिंग बैड सेंसेशन इन यू, यू स्टार्ट सफरिंग। सो द सीड इटसेल्फ द सीड ऑफ सफरिंग, द फ्रूट, द बिगर फ्रूट दैट यू विल गेट विल बी द फ्रूट ऑफ सफरिंग ओनली, एंड दैट यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग एज यू ऑब्जर्व द सेंसेशंस व्हाइल डूइंग एनी एक्शन, एनी कर्म ऑफ द माइंड, यू विल गेट ए सेंसेशन इन द बॉडी एंड सी whether द सेंसेशन इज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। इफ इट इज अनप्लेजेंट सर्टनली इट्स अ बैड कर्म which will give you unpleasantness in future also. चार पांच दिन के बाद बहुत घबराहट होती है और मन नहीं लगता, बाकी के दिन घर जाने को जी चाहता है, क्या करें? उस वक्त का जो आचार्य उससे मिलो, वो बताएगा क्या करें। कभी कभी ध्यान करते करते एक मोनोटोनी जैसे मालूम होने लगती है और भीतर का विकार जोरों से फूटता है तो उसका सामना नहीं कर पाते, तो सिखाने वाला सिखाएगा, अब संवेदना को थोड़ी देर छोड़कर खाली सांस का काम करो, खाली सांस का काम करो, मन फिर शांत हुआ फिर संवेदना काम शुरू कर दो। ये उस समय जो आचार्य है सिखाने वाला उससे मिलना चाहिए। विपश्यना साधना के लिए क्या क्या 10 दिन के कम का समय में काम नहीं बन सकता? व्यापारी है ना, बार्गेनिंग शुरू कर दी। हम भी व्यापारी थे तो हमने बार्गेनिंग की अपने गुरु से, 10 दिन, मैं इतना व्यस्त आदमी, मैं 10 दिन कैसे निकालूं? देखिए मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आप समझा दीजिए ना, घर में करूँगा मैं, खूब करूँगा। अच्छा एक दिन आप बता दीजिए, बाकी घर में कर लूँगा। बहुत बार्गेनिंग की बात बनती नहीं, मन का ऑपरेशन है, बहुत गहराइयों में जाना होता है। ऊपर ऊपर से मन को सुधारना हो तो बहुत रास्ते हैं और वो थोड़े में हो जाते हैं, लेकिन भीतर जड़ों तक जा कर के अपने स्वभाव को बदलना है, अपने विकारों की जड़ें निकालनी है, तो 10 दिन बिना पकड़ में नहीं आएगी बात। मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, ये कैसे जानेंगे? जब मिल जाएगी तो हमसे पूछने नहीं आओगे। प्राप्त करो, इस विद्या से मालूम होगा। हमें बहुत क्रोध आया करता था, अब क्रोध नहीं आता तो मुक्ति हो गई ना क्रोध से। बहुत भय जागता था, अब भय नहीं आ रहा तो भय से मुक्ति हो गई ना। अब विकारों, जो जो विकार से हमको तकलीफ होती थी, विकार निकल गए, हम मुक्त हो गए, सारे विकार निकल गए, अपने आप मुक्त हो गए। आपके उपदेश तो ये फलित होता है कि विपश्यना के फायदे केवल ये मनुष्य भाव तक सीमित हैं। बिल्कुल ठीक, जो काम हम कह रहे हैं कि जो काम मनुष्य को प्रकृति ने दिया है या कहें ईश्वर ने दिया है कि अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर की सच्चाई को देखो, ये काम एक पशु नहीं कर सकता, एक पक्षी नहीं कर सकता, एक सरीसृप नहीं कर सकता, एक कीट पतंग नहीं कर सकता, एक प्रेत प्राणी नहीं कर सकता। मनुष्य के पास बहुत बड़ी शक्ति है ये, अब उसका उपयोग न करें हम तो हमारी कमजोरी है। तो इस शक्ति का उपयोग करके अपने को विकारों से मुक्त करना चाहिए। क्या भक्ति करने से आत्मा के गहरे संस्कार नहीं मिटते? भक्ति का मतलब प्रहलाद जैसी, मीरा जैसी, ध्रुव जैसी। भक्ति से किसी के विकार अगर निकले हैं जड़ों से, तो भक्ति के साथ उसने विपश्यना जोड़ी है तो निकले हैं, और नहीं तो हम हजार कहीं निकल गए, नहीं निकलते। जड़ों तक तो तब जाएंगे जबकि हम साथ संवेदना को देखेंगे। मन के विकार हमारी संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। मन में विकार जाग नहीं सकता बिना संवेदना के, तो मन के विकार निकल नहीं सकते बिना संवेदना के। कांटा चुभता है, बड़ा दर्द होता है, लेकिन कांटा भीतर है, उसे निकालना है तो एक सुई और चुभोनी पड़ती है, और उतनी गहरी चुभो के उसको निकालनी पड़ती है। तो इस तरह से जो संस्कार बनते हैं संवेदना से, उसको संवेदना से ही निकाला जा सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मुक्ति। अच्छी बात। हाउ डू वी ब्रेक द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? This is the way to come out of this endless cycle of birth. It does not remain endless. A end does come. The cycle is because of the impurities that we are accumulated. Every impurity, and the deeper the impurity, at the end of the life it will raise its head. And as it has raised its head, the next birth is bound to come. And when there is no more impurity in the mind, then at the time of death, there is nothing to push to give another birth, and you are out of birth and death cycle. What is the difference between Vipassana and J. Krishnamurti's teaching? We are not here to compare and contrast others, but I know I met J. Krishnamurti, a wonderful saintly person, but the trouble was he was teaching the same thing, but only at the intellectual level. There is no technique, because he found people get so much involved in the technique. And when I met him and we discussed and I explained what we are teaching, he said, no, this is no technique. You are aware of the reality of the moment, as it is. This is no technique, and it gives wonderful results. He has accepted it. Try, instead of comparing with anybody else, just try and experience yourself. And when you get the results, you will understand, without condemning any other technique, make use of this technique for your good and for the good of so many others. May all of you be happy. Sabka mangal ho, khub kalyan ho. खूब कल्याण। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो।